क्या आपने कभी पैसों से बात की है? मैंने की है। नमस्ते, मैं हूं चार्वक माधुरी और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट 210 का आटा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं जो मेरे दिल के काफी करीब है। एक ऐसा किस्सा जिसने मेरे जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये पूरा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं charvak.com पर, charwak.com। बताना जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैंने मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दी थी और मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा था। नए जॉब का इंटरव्यू भी पास कर लिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाए बस डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए और आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट आने में अभी कुछ 20-25 दिनों का समय था। उन दिनों मेरी माता जी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लेती थी और उनके स्टूडेंट्स उम्र में मुझसे भी बड़े हुआ करते थे। हाल ही में ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दी थी तो 19-20 साल का था मैं। करीब 3 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। उस वक्त मेरे नाना जी ने खुद पब्लिश की हुई उनकी किताब की सारी कॉपीज हमें दे दी थी, ये कहकर कि अब उनके पास हमें प्रॉपर्टी के नाम पर देने के लिए कुछ भी नहीं है, इन किताबों को बेचो और पैसे कमाओ। तो मैं उन किताबों को डोर टू डोर जाके बेचता था। मेरे माताजी की भी क्लासेस चल रही थी तो हमारी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता था उनके कोचिंग क्लासेस के फीस से। भाई की भी पढ़ाई चल रही थी तो कुल मिला के जीवन कुशल मंगल था। लेकिन जिस तरीके से जिंदगी को कुशल और मंगल ये दो शब्द पसंद नहीं हैं, मेरी भी जिंदगी को शायद ये दो शब्द पसंद नहीं आए। एक दिन अचानक माँ की तबीयत ख़राब हो गई। कुछ टेस्ट कराए तो पता चला कि टाइफाइड हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन घर पे अगर रख रहे हैं तो पूरी तरीके से आराम की ज़रूरत है, वो काम नहीं कर सकती। तो क्लासेस बंद हो गए। उन दिनों जितनी कमाई होती थी उसमें से एक बड़ा सा हिस्सा जाता था कर्जे की रकम चुकाने में और बचा हुआ हिस्सा जाता था घर का किराया देने में। उसमें से अगर कुछ पैसे बचे तो वो घर खर्च के लिए इस्तेमाल होते थे। तो सेविंग नाम की कुछ चीज़ थी ही नहीं। किताबें बेचकर घर खर्च का थोड़ा सा पैसा निकल जाता था। अब क्योंकि क्लासेस बंद थे तो वहाँ से फीस भी नहीं आ रही थी, तो मुझे हर दिन किताबें बेचनी ही पड़ती थी घर खर्च के लिए। एक दिन दोपहर के खाने के बाद जब मैं घर से निकलने लगा किताबें बेचने के लिए, तब माँ ने कहा कि आटा ख़त्म हो चुका है, पहले आटा लेकर आओ ताकि शाम को रोटी बन सके। मैंने कहा ठीक है, पैसे दे दो। तो माँ ने कहा पैसे ख़त्म हो गए, एक काम करो ATM जाओ, 500 रुपये निकालो, 210 का 5 किलो आटा आ जाएगा, उसके साथ दाल और चावल भी लेकर आओ क्योंकि अनाज भी सब ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा ठीक है। मैं ATM गया 500 रुपये निकालने के लिए, लेकिन स्क्रीन पर मैं मैसेज देखता हूँ कि अनेबल टू डिस्पेंस योर कैश ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। अब मैं बैलेंस चेक करने लगा और पता चला कि अकाउंट में सिर्फ 80 रुपये हैं। मैंने सोचा कि आज जाऊँगा किताबें बेचूँगा और उसमें से जितने भी पैसे आ जाएंगे उसमें से आटा और सब कुछ लेकर आऊँगा। तो मैं वापस घर गया, मैंने माँ को नहीं कहा कि अकाउंट में सिर्फ 80 रुपये हैं। मुझे डर था कि शायद वो सुन के और उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि मैं शाम को आते वक्त आटा और सारा सामान लेकर आऊँगा, अभी मुझे लेट हो रहा है तो मुझे अभी जाने दो। करीब 12:30 बज रहे थे, मैं घर से निकला। अब सच बताऊँ तो मैं 19-20 साल का था तो मुझे ये सेल्समैन बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई मेरा जानने वाला मुझे किताबें बेचते हुए देखे। हम रहते थे बोरीवली में, तो वहाँ से मैं करीब करीब 1.5 घंटे दूर विरार के भी आगे एक स्टेशन है डहानू, डहानू के आसपास के स्टेशन्स पे जाकर मैं किताबें बेचता था। किताब पर MRP थी 210 रुपये की, तो कभी 150 में बेचता था, कभी 180 में बेचता था, कभी 200 रुपये में बेचता था। उस दिन सोचा 3 किताबें 200-200 रुपये में बेचूंगा तो सारा का सारा सामान आ जाएगा। करीब 2:15 बजे मैं मेरे वर्क स्टेशन पहुंच गया। पहले घर की बेल बजाई, किसी ने दरवाज़ा खोला और मैंने मेरी सेल्स पिच शुरू कर दी। देखिए, आ गया अंग्रेजी सीखने का एक नया सरल और आसान फॉर्मूला, अब घर बैठे अंग्रेजी सीखे। अब जैसे हर सेल्समैन का स्वागत होता है मेरा भी हुआ। मुंह पर दरवाजा पटक के। ये बात मेरे लिए इतनी आम हो गई थी कि जब तक कोई मुंह पर दरवाजा ना पटके तब तक बेचने का मूड ही नहीं होता था। उस दिन पहले ही घर पर ऐसे स्वागत ने मेरी एक्साइटमेंट और मेरी एनर्जी और बढ़ा दी और मैं दुगने एक्साइटमेंट और दुगने एनर्जी के साथ दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। अब क्योंकि इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मेरी पूरी बात सुनी गई। मेरी पूरी सेल्स पिच खत्म कर कर मैंने पूछा, तो कितने किताब लेंगे आप? उन्होंने बड़े ही पोलाइटली कहा, जी एक भी नहीं। जवाब देने के उनके इस तरीके से मैं समझ गया कि यहाँ पर फॉलोअप की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो उनको नमस्ते करके मैं मुड़ा मेरे अगले घर की तरफ। एक के बाद एक दरवाज़ा मैं ठकठकाते गया और एक के बाद एक ना सुनने के नए तरीके सीखता गया। देखो, जिंदगी में वैरायटी होनी चाहिए। मैं रिजेक्ट होने की वैरायटी सीख रहा था। हर बार एक नया तरीका, हर बार एक नया रीज़न ये बुक ना लेने का। लेकिन उस दिन मानो मेरे साथ सब मिलकर एक गेम खेल रहे थे, हम नहीं मानेंगे। अजीब गेम है भाई, लेकिन मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं रिजेक्शन पे नहीं वैरायटी पे ध्यान दे रहा था। इस हंसी मजाक के बीच एक घंटा कैसे निकल गया कुछ पता नहीं चला। अमूमन मेरी वापसी का समय होता था 6 बजे, ताकि 7:30 7:45 बजे तक घर पहुंचूं और 8:30 तक सब मिलकर खाना खाए। अब शाम के 5 बज गए लेकिन एक भी किताब नहीं बिकी थी। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि 5 बजे हो और एक भी किताब ना बिके। अब मामला थोड़ा सीरियस हो रहा था। मैंने मेरी स्पीड और एक्साइटमेंट दुगनी करके सेल्स पिच शुरू कर दी, जैसे हर सेल्समैन करता है। मानो सेलिंग एक जंग हो और वो उस जंग का एक अहम सिपाही। अब ना हार का डर और ना मरने की चिंता, बस एक लक्ष्य, जीतना। सेल्समैनशिप के जितने भी पैंतरे मुझे उस वक्त पता थे मैंने सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम के 6 बज गए। अब मुझे डर लगने लगा। क्या होगा अगर एक भी किताब नहीं बिकी? घर पर माँ और भाई भूखे रहेंगे। पैसे किससे मांगूंगा? कौन मदद करेगा? दुकानदार उधार देगा क्या? अगर नहीं तो माँ को क्या जवाब दूंगा? एक पढ़ा लिखा बेटा घर वालों को एक वक्त का खाना तक नहीं दे सकता। ये सोचकर मैंने तय कर लिया कि आधा घंटा और ट्राई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, फैला लेंगे हाथ किसी के सामने, लेकिन अगर मदद नहीं मिली तो? लेकिन यकीन मानिए, जितना डर मुझे उस वक्त लगा, उस तरीके का डर मुझे आज तक नहीं लगा। जरा आप भी सोचिए, आपके होते हुए आपकी फैमिली, आपके घर वाले खाली पेट सोए, डर आपको भी लगेगा। और मैं तो बस 19-20 साल का था। मेरे दोस्त भी मेरे ही जैसे थे, कोई कमाई नहीं करते थे। उस वक्त 50 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। 4.5 रुपये में मैं मेरे घर से स्टेशन तक बस से जाया करता था। 5 रुपये में एक वड़ा पाव आता था। 8 रुपये में मैं मेरे घर से कॉलेज बोरीवली से कांदिवली तक जाता था। ये सब सोचने के बाद पता चला कि किताब बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और मैं नया घर ढूंढने लगा। फिर से सेल्स पिच शुरू की, फिर से वही नतीजा। अब डर गुस्से में तब्दील हो चुका था। देखता हूं कोई कैसे नहीं खरीदता। फिर से नया घर, फिर से वही कहानी। 6:15 हो चुके थे। मैंने सोचा आखिरी 15 मिनट में पूरी जान लगा दूंगा। मैंने सेल्स पिच शुरू कर दी और इस बार पूरी सेल्स पिच सुनने के बाद एक ग्राहक ने कुछ सवाल पूछे किताब के बारे में। जब कोई सवाल पूछता है मतलब उसे क्यूरियोसिटी है। आपको बस उसके कुछ डाउट्स क्लियर करने होते हैं और ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है। मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने भी पूरी तैयारी के साथ उसे जवाब दिया। पूरे 10 मिनट के सवाल जवाब के बाद उसने ये कहकर मना कर दिया कि वह खुद एक टीचर है और उसे इस किताब की जरूरत नहीं है। 6:25 हो रहे थे। आंखों में आंसू आने ही वाले थे। मैंने खुद को कहा कि 5 मिनट बाकी है, एक आखिरी घर करेंगे, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो पता नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार। मैंने बेल बजाई। एक 40-45 साल की महिला ने दरवाज़ा खोला। फिर से चेहरे पे हंसी के साथ, उसी ताकत एक्साइटमेंट के साथ मैंने सेल्स पिच शुरू कर दी। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि 210 बहुत ज़्यादा है। तब तक मैंने तय कर लिया था कि किताब बेचूंगा तो 210 में ही, वरना नहीं बेचूंगा, क्योंकि 210 में आटा तो आ जाएगा, सूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन किताब 210 में ही बेचूंगा। महिला ने कहा नहीं चाहिए। मैं मुड़कर वापस चलने लगा। दो चार कदम चला हूंगा तो पीछे से आवाज आई, सुनो वापस आओ। मैं वापस उस दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। अंदर से उनके पति आए और उन्होंने कहा कि ज़रा किताब दिखाओ, और वो किताब पढ़ने लगे। पहला पन्ना पढ़ा, दूसरा पन्ना पढ़ा, तीसरा पन्ना पढ़ा। वो रुके और मेरी तरफ देखने लगे और कहा 200 रुपये दूंगा। मेरे पास सोचने का समय नहीं था, मैंने तुरंत हाँ कर दी। वो अंदर गए और पैसे निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए। दो नोट्स थी, मैंने एक हाथ में वो नोट्स रखकर दूसरे हाथ से एक अच्छी कॉपी उनको दे दी और थैंक यू कहकर मैं निकलने लगा। तभी उन्होंने रोका और कहा कि अरे ये तो एक ही किताब है, मुझे 3 चाहिए। मैंने कहा 200 में 3 किताबें कैसे आएंगी। उन्होंने कहा ठीक से देखो, 200 नहीं 600 रुपये दिए हैं। मैंने मुट्ठी खोली और गिनने लगा, एक 500 की नोट, एक 100 की। मैंने 2 और किताबें उन्हें दे दी। उन्होंने थैंक यू कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं स्टेशन की तरफ चलने लगा। ये सब इतने जल्दी हुआ कि लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। कुछ 10 कदम चलने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे हाथ में 600 रुपये हैं। मैं रुका और उन 2 नोट्स को देखने लगा और देखते देखते अचानक से बोल पड़ा, तुम्हें पता नहीं तुम इस वक्त क्या हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने नोट्स फोल्ड की, अपने वॉलेट में रखी और चलने लगा। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अलग सी हंसी, सुकून और खुशी की हंसी। वापसी में मैंने आटा, सब्जी, दाल, चावल और साथ में एक 10 रुपये की चॉकलेट भी ली। वो एक चॉकलेट हम तीनों ने बांट कर खाई। उस रात की रोटी मुझे दुनिया की सबसे लजीज रोटी लगी। इस 210 के आटे ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे खुश रहना सिखा दिया। उस वक्त के बाद से मुझे लगने लगा कि जीने के लिए खाना मिल रहा है ना, रहने के लिए छत है ना, तो रहते हैं ना खुश। इसके बाद अब जो भी मिले वो बोनस मान के चलेंगे। हम कई बार ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हैं ये सोच कर कि मेरी सैलरी कम है, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा सा घर नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा कमाता है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन एक बात सोची है कि आपको हर दिन आपका पेट भरने के लिए खाना तो मिल रहा है ना, एक छत तो है ना जिसे आप अपना घर कह सकते हैं, तो रहते हैं ना खुश। किस बात की ऐसी नाराज़गी है। हाँ, कुछ पाने के लिए जी जान लगा देंगे, अगर मिले तो उसको बोनस समझ के रख लेंगे ना, जितना भी मिले काफी है, और अगर नहीं मिला तो खाना और घर तो है ही ना, तो रहते हैं ना खुश। कुछ महीनों पहले की बात है, मैं मेरे दोस्त के घर पे था और मुझे बड़ी भूख लगी थी और उसके घर पे सिर्फ चावल बचे थे, तो वो कहने लगा कि यार ऑर्डर करते हैं हम लोग कुछ। तब तक मैंने चावल लिया और बड़े चाव से खा रहा था, बड़ा खुश होकर खा रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे पूछने लगा कि यार तू ठंडे चावल इतने मजे से कैसे खा सकता है। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने उसे सिर्फ यही कहा, तब भी ठंडा ही खाते थे, फर्क सिर्फ इतना है आज चावल है, तब कंकड़ थे। आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, या आपको कुछ भी पूछना हो या बताना हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अन्य शेर शायरी और पॉडकास्ट के लिए और आर्टिकल्स के लिए जाइए चारवाक.com पर। शुक्रिया।